ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है, उसके दूसरे अध्याय का नौवा सूत्र अभी हमारा चलेगा। आठवें सूत्र में हमने देखा था उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण बताया था कि उपयोग यह जीव का लक्षण है। अब उस उपयोग के भेदों की यहाँ चर्चा चलेगी। नौवा सूत्र है स द्विविधो अष्ट चतुर्भेदः। स यानी वह दो प्रकार का है। कौन वह, किसकी बात चल रही थी? उपयोग की, क्योंकि आठवें सूत्र में जिसको बताया वह उपयोग दो प्रकार का है, अष्ट चतुर्भेदः, आठ और चार। ये आठ क्या है और चार क्या है? तो ज्ञान और दर्शन ऐसे दो भेद उपयोग के बताए थे। तो पहले स द्विविधो ने वो दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार है? तो ज्ञान और दर्शन, और उसकी और सब उसके और प्रकार बताए, आठ प्रकार का और चार प्रकार का। देखो प्रश्न पहले यहां लिखा है वह उपयोग, यहां अर्थ लिखना चाहिए था, प्रश्न लिखा है सह ने वह उपयोग द्विविधा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेद से दो प्रकार का है, और वे क्रमशः, वे ने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, वे क्रमशः ने वो अभी संख्या बताने वाले हैं, तो अनुक्रम से बताएंगे। पहले ज्ञान का नाम लिया है फिर दर्शन का, तो पहले आठ कहेंगे फिर चार कहेंगे। वे क्रमशः अष्ट चतुर्भेद आठ और चार भेद सहित है, अर्थात ज्ञानोपयोग के मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ये पांच सम्यक ज्ञान, और कुमति कुश्रुत तथा कुअवधि ये तीन मिथ्या ज्ञान, इस प्रकार आठ भेद है। जब हम सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो सामान्य से पांच प्रकार में डिवाइड होते हैं। परंतु हमें पता है कि मति ज्ञान यानी उसमें सुमति ज्ञान और कुमति ज्ञान दो प्रकार होते हैं। श्रुत ज्ञान में भी सम्यक श्रुत ज्ञान और मिथ्या श्रुत ज्ञान, जिसको श्रुत अज्ञान भी कहते हैं, ये दो प्रकार है। अवधि ज्ञान भी सुअवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, जिसको विभंग ज्ञान कहते हैं। तो मनपर्य ज्ञान में ऐसे दो भेद हो गए कि नहीं हो गए? हाँ कलाबेन, आप क्या कहती हो? मनपर्य पहले तीन में तो सु और कु शब्द लगाए, तो मनपर्य और केवल ज्ञान में सु और कु होगा कि नहीं होगा? मन क्यों नहीं होता है? मनपर्य ज्ञान किसके होता है? मुनियों के ही होता है, भावलिंगी मुनियों के ही मनपर्य ज्ञान होता है, तो वहां कु होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अवधि ज्ञान तो सामान्य मनुष्य को भी होता है, तीरंजों को भी होता है, देवनार की मिथ्या दृष्टियों के भी पाया जाता है। तो यहां कहते हैं देखिए आठ भेद है, तथा दर्शनोपयोग के यानी दर्शन की जो पर्याय चलेगी, दर्शनोपयोग के चक्षु अचक्षु अवधि तथा केवल, इस प्रकार चार भेद है। ज्ञान में तो सु और कु शब्द लगाया था, दर्शन में ना सु होता है ना कु होता है, यानी सुमति ज्ञान के पहले सुदर्शन होगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो निराकार होते हैं। ज्ञान में जैसे मिथ्या और सम्य कैसे दो भेद होते हैं, वैसे दर्शन में कोई भेद नहीं होते, उसकी बात अभी हम देखेंगे। तो तो ये चार भेद इसमें देखे हमने। इस प्रकार ज्ञान के आठ और दर्शन के चार भेद मिलकर उपयोग के कुल 12 भेद हैं। अब टीका। इस सूत्र में उपयोग के भेद बताए हैं, क्योंकि यदि भेद बताए हो तो जिज्ञासु जल्दी समझ लेता है। इसलिए कहा है, क्यों? जितना डिटेल में जानो उतने और समझ में आसान हो जाता है और उसमें बहुत दृढ़ श्रद्धान भी हो जाता है, क्योंकि हम उसके विशेष जानते हैं तो जो बात हमको समझनी है बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। इसलिए शास्त्र में कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। यानी सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है। देखो, ये सामान्य से विशेष बलवान है नहीं कहा, नहीं तो आप कहेंगे आप तो सामान्य की दृष्टि कराते हो और यहां विशेष को बलवान बताते हो। ख्याल में है ना, ये सामान्य विशेष यानी वो गुण और पर्याय वाला सामान्य विशेष यहां नहीं समझना। सामान्य नहीं, जनरल बात, हम स्थूल अपेक्षा से कहते हैं उसको सामान्य कथन कहते हैं, और विशेष कथन यानी उसके डिटेल में बताएंगे। जैसे हम बच्चों को कहेंगे आज क्या कुछ मिठाई बनाई है, वो सामान्य कथन है। फिर मिठाई में पूरन पोली बनाई के जलेबी बनाई, वो हम नाम लेकर बताएंगे ना, तो वो विशेष हो गया। या भी हम सामान्य से कहते हैं जीव ने कर्म को बांधा और कर्म को छोड़ा, और विशेष में बताए तो कर्म के भेद और समझाएंगे, कौन कौन से कर्म बंधे जाते हैं, कैसे छूटते हैं, उसके विशेष जानेंगे। तो ये उसका हो गया विशेष। क्योंकि सामान्य से अरे बहुत कर्म बनते हैं, मुझे कर्म काटना है, ऐसा जब समझते हैं, और जब विशेष में समझते हैं कि पुण्य करो पाप करो वो घाती में कुछ परिवर्तन नहीं होता, तो समझ में आता है ये मिथ्यात्व अनंतानुमंदी आदि तो बनते ही रहते हैं, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है। तो फिर जब हम ये जो पंचलब्धि में जिसकी हमने चर्चा की ना, कि जब जीव तत्व विचार करता है तो कर्मों में कितने परिवर्तन अपने आप होते हैं, ये जब हम विशेष जानते हैं तो हमें दृढ़ श्रद्धान होता है कि तत्व विचार से ही ये सारी बातें होने वाली है, कुछ व्रत करने से हम जल्दी आगे बढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कहते हैं, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। यहां सामान्य का अर्थ है संक्षेप में कहने वाला, जिस शास्त्र में संक्षेप से कहा हो, और विशेष का अर्थ है भेद विस्तार करके बताने वाला। शास्त्र में दो प्रकार के शिष्य भी बताए हैं, एक होते हैं संक्षेप रुचि और एक होते हैं विस्तार रुचि वाले। यानी कोई संक्षेप में बताने पर क्योंकि समझ में आता है उनको, और किसी को बहुत विस्तार से बताने पर समझ में आता है। दोनों ही प्रकार के कथन शास्त्र में आते हैं। तो धवला में भी कितनी बार ऐसा है, ये संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए बताया, अब विस्तार से समझाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई विस्तार से समझाने पर समझने वाले शिष्य भी होते हैं। साधारण मनुष्य विशेष से भली भांति निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तो बता दिया जीव जुदा पुद्गल जुदा, और विशेष में फिर जीव मैं हूं, फिर उसके लक्षण बताएंगे, पुद्गल में फिर कर्म भी है, शरीर भी है, उसके अनंत परमाणु है, फिर उसकी विशेषता है, कर्म के भेद प्रभेद, मूल में क्या जानना है उनके सामान्य से, बस जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। और विशेष में जितने हम विशेष करके बताते हैं तो वो और ख्याल में आता है वो कैसे भिन्न भिन्न है। अब यहां कुछ और विशेष बातें यहां समझा रहे हैं। दर्शन शब्द का यहां लागू होने वाला अर्थ, यहां शब्द क्यों डाला? क्योंकि दर्शन शब्द के भी अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अभी तक हमने मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की बात बहुत बार देखी है, वहां भी दर्शन शब्द आया है, और यहां जब उपयोग के दो भेद किए हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यहां भी दर्शन शब्द आता है, क्या ना? तो यहां कौन सा अर्थ होता है उसको देखते हैं। शास्त्रों में एक ही शब्द का कहीं कोई अर्थ होता है और कहीं कोई। दर्शन शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। अब उसमें बताते हैं, अध्याय एक सूत्र एक दो में मोक्ष मार्ग संबंधी कथन करते हुए सम्यक दर्शन शब्द कहा है, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा है। सूत्र एक किसी को पता है कौन सा है? तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र? हाँ हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वहां सम्यक दर्शन शब्द आया है, वहां दर्शन शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा। सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन ऐसा शब्द आता है, तो वहां सम्यक और मिथ्या के साथ जो दर्शन शब्द लगाया है उसका अर्थ है सम्यक श्रद्धा या मिथ्या श्रद्धा। श्रद्धा कहो, अभिप्राय कहो, प्रतीति कहो। अब उपयोग के वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ, अब यहां उपयोग में भी हमने ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे दो भेद देखे, तो यहां उसका अर्थ क्या है? वस्तु का सामान्य ग्रहण मात्र, वस्तु के विशेष ग्रहण को ज्ञान कहते हैं और उसके सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं। अब इंद्रिय के वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ, हम भगवान की स्तुति करते हैं तो आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए ऐसा कहेंगे ना, तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ नेत्रों के द्वारा देखना मात्र है। इन तीन अर्थों में से यहां प्रस्तुत सूत्र, प्रस्तुत यानी अभी हम जिसकी बात चल रही है, वर्तमान में जिसकी बात कर रहे हैं, करंट टॉपिक जिसको हम कहेंगे, दूसरा अर्थ लागू होता है। कौन सा है दूसरा अर्थ? सामान्य ग्रहण मात्र। ग्रहण करना है ने, अभी हम जानने के अर्थ में बताते ना, ग्रहण करना है ने जानना। जब शास्त्र में बात आती है समय सार में, राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो, तो आत्मा को ग्रहण करने ने क्या सरला बहन, काहे से ग्रहण करना, हाथ से के कैसे? हाँ, ज्ञान से, जानने के। ग्रहण करना का ही अर्थ होता है कि जानना, फिर ग्रहण करने का अर्थ जानना और छोड़ने का अर्थ छोड़ देना, जानना छोड़ना। क्योंकि हम किसको जानने में लगे हैं? विकारों को, राग को ही जानने में अटके हैं, अपने ही पर्याय में होने वाले राग को जान रहे हैं। और फिर हमको जब हमने सुना कि राग को छोड़ना है, तो राग को छोड़ना है तो लक्ष्य किसका किया? जब हम कहा कि हमको विकार को निकालना है, तो जिसको निकालना है उसकी तरफ देखते रहे तो निकलेगा ना वो। तो जब हम राग को छोड़ना है ऐसा समझते हैं, तो हम, अरे हमारे में कितना राग है, चलो अभी उसको छोड़ना है, ऐसा यानी हम विकार का ही लक्ष्य करते हैं। राग को छोड़ना यानी उसको जानते रहे थे, अभी उसको गौण कर दो, छोड़ दो, और आत्मा को ग्रहण करो यानी आत्मा को जानते रहो। तब जो नई पर्याय होगी उसमें राग उत्पन्न ही नहीं होगा, तब हम कहेंगे राग को इसने छोड़ा। जो ऑलरेडी है उसको क्या छोड़ना, वो तो छूट ही जाने वाला है एक समय के बाद। इसलिए यहां जो शब्द का अर्थ है वो हमें बराबर समझना चाहिए। देखो अभी यहां दर्शनोपयोग की बात करते हैं, अभी ये दर्शन के संबंध में चर्चा तो चलेगी, जितना समझेंगे उतना तो समझेंगे, और कन्फ्यूजन होगा तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहां तो क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग उसका समझाने के तरीके अलग होते हैं, और जो हम जानते हैं वो तो ज्ञान ही हो जाता है। अब ज्ञान के पूर्व अवस्था का ये दर्शन नाम है, तो वो हमारे समझ में आने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर भी शास्त्रों में जिस शब्दों में, जिन शब्दों में बताया है, वैसे तो हम समझेंगे जरूर उसकी परिभाषा, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है तो एग्जैक्ट नहीं ख्याल में आता है। अरे ख्याल में आ जाता है तो वो ज्ञान ही हो जाता है ना। वैसे यहां दर्शन शब्द का अर्थ हम देखेंगे, उसमें से थोड़ी बहुत बातें नहीं भी समझ में आई तो सामान्य अवलोकन मात्र ऐसा दर्शन का अर्थ करते हैं, और यहां हम उसके डिटेल में थोड़ी बातें जानेंगे। यहां देखो ये तत्वार्थ सार में से ये दर्शनोपयोग को पहले बताते हैं। किसी भी पदार्थ को जानने की योग्यता होने पर उसके लिए क्या शब्द आया? लब्धि होने पर। क्षयोपशम जो ज्ञान है, ज्ञान का उघाड़, उस ज्ञान के उघाड़ को लब्धि कहते हैं। जैसे एक इंद्रियों में कितनी लब्धि है, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जानने की जितनी उसकी पावर है, क्योंकि एक इंद्रियों में भी हम देखते हैं सूक्ष्म निगोद से लेकर बाकी सभी वो एक इंद्रिय ही है, फिर भी हरेक की ज्ञान की योग्यता, ज्ञान का उघाड़ अलग अलग है। पंचेन्द्रियों में मनुष्यों में भी कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा मतिमंद होता है, तो उनके भी बुद्धि के लेवल में इंटेलिजेंट क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं यहां, लब्धि। यहां कर्मों के क्षोभशम उसमें निमित्त रूप से पाया जाता है। तो किसी भी पदार्थ को जानने की योग्यता होने पर उस पदार्थ की ओर सन्मुखता, प्रवृत्ति अथवा दूसरे पदार्थों की ओर से हटकर विवक्षित पदार्थ की ओर उत्सुकता प्रकट होती है, सो दर्शन है। क्या कहते हैं, हम किसी चीज को जान रहे हैं, मान लेते हैं यह इस पुस्तक की ओर मैं देख रही हूं और यहां से हटकर अभी ये लकड़ी जो है इसको देखने की उत्सुकता प्रकट हुई। लकड़ी को जाना वो तो ज्ञान कहने में आएगा, परंतु एक से हटा उपयोग और दूसरी तरफ अभी उत्सुक हुआ है वो, उसकी तरफ देखेंगे जानेंगे वो तो ज्ञान हो जाएगा। वो वस्तु क्या है ये जब हमारे ख्याल में आती है वो तो ज्ञान हो जाता है, परंतु हम एक की तरफ से उपयोग हटा है और दूसरी की तरफ वो उत्सुकता हो गई है या उसके सन्मुख हो गए हैं, उस सन्मुख प्रवृत्ति हुई है, उसको कहते हैं दर्शन। वह उत्सुकता चेतना में ही होती है, यह उत्सुकता बाह्य पदार्थ में नहीं है। आत्मा में ऐसी वृत्ति उठी या उत्सुकता उठी कि मैं दूसरे किसी वस्तु को जानूं, उस वस्तु के तरफ जानने की उत्सुकता निर्माण हुई, उसको कहते हैं दर्शन। जब तक विवक्षित पदार्थ को थोड़ा भी नहीं जाना जाता तब तक के चेतना के व्यापार को दर्शनोपयोग कहा जाता है। ये भी बहुत छोटा सा अंतर्मूर्त है, एक पदार्थ से लक्ष्य हटा और दूसरी तरफ उन्मुख हुआ, ये आत्मा में जो कुछ वहां उत्सुकता उत्पन्न हुई उसको कहते हैं दर्शन। जैसे एक मनुष्य का उपयोग भोजन करने में लगा हुआ है और उसे एकदम इच्छा हुई कि बाहर मुझे कोई बुलाता तो नहीं है, एक्चुअल उसने किसी की आवाज सुनी जो मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा है, वो तो उसको ज्ञान हो गया, कर्णेन्द्रिय के द्वारा वो उसका मति ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि उज्ज्वला करके किसी ने मुझे पुकारा तो वो तो ख्याल में आ गए ना। परंतु उससे पूर्व भोजन से उपयोग हटा था और वो शब्द के प्रति उपयोग थोड़ा कुछ उत्सुकता अंदर हो गया, हाँ कुछ कोई बुला रहा है, यानी एक्चुअल उस आवाज को नक्की करने के पहले में पहले जो कुछ हुआ उसको हम दर्शन कहेंगे। इसमें चेतना के उपयोग का भोजन से हटना और शब्द की ओर लगना, किंतु जब तक शब्द की ओर का कोई भी ज्ञान नहीं होता उसको हम आइडेंटिफाई करते वो तो ज्ञान हो जाता है। अब ये उपयोग तो वहां से हटा है और यहां लगा है, परंतु वो उसको आत्मा के साथ लेना है, तब तक के व्यापार को दर्शन उपयोग है। पूर्व विषय से हटना और बाद के विषय की ओर उत्सुक होना ज्ञान की पर्याय नहीं है, इसलिए उस चेतना पर्याय को दर्शनोपयोग कहा जाता है, उसको भी ग्रहण ही कहने में आता है। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग दोनों ही चेतना यानी चैतन्य परिणाम के ही दो भेद है। तो जब जब ज्ञान होता है तो हम कहें दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है।
जब तक ज्ञान नहीं होता कोई चीज हम देखते रहते नहीं क्या है क्या है, तो वो दर्शन
है? नहीं नहीं, वो क्या है चलता है, वो तो अवग्रह यहाँ आवाय के रूप में वो हम उसको जैसे क्या है नक्की करने जाते हैं, ग्रहण तो हो गया है विषय का, ये कागज है कि कागज पर कुछ लिखा है इतना तो ज्ञान हुआ है, तो उसको भी ज्ञान कहेंगे। वो मति ज्ञान के जब हम डिटेल्स जानेंगे अवग्रह ईहा अवाय और धारणा उसमें ये होते हैं, परंतु वो अवग्रह के भी पहले वाली जो बात है वो जो स्टेज है उसको यहां दर्शन कहने में आता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता है दर्शन क्या है, परंतु इतना बहुत अच्छी तरह से यहां उसका वर्णन किया हुआ है। एक विषय से उपयोग हटा और दूसरी तरफ उन्मुख हुआ, मन उसमें जो आत्मा में जो उत्सुकता उत्पन्न हुई, इसलिए वहां सामान्य ग्रहण में सामान्य शब्द का अर्थ आत्मा भी करते हैं। अलग अलग जगह उसका बहुत अलग अलग वर्णन आता है।
ये वर्ड उत्सुकता ऐसा लगता है कि चारित्र से रिलेटेड
नहीं, चारित्र से रिलेटेड नहीं है, एक जानने के प्रति आत्मा का जो परिणाम है ऐसा ले सकते हैं। उस राग की बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ जो हम छद्मस्थ जीव है, छद्मस्थ यानी कौन, बारहवें गुणस्थान तक के, हमारा जो ज्ञान है वो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। क्या कहा, छद्मस्थों के जो जो ज्ञान होता है उससे पूर्व दर्शनोपयोग पाया जाता है। तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। केवली भगवान में क्या होता है, हाँ दोनों साथ में, इसलिए हमारा जो उपयोग है वो क्रमिक उपयोग कहने में आता है। और केवल ज्ञानी कैसे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों ही एट अ टाइम चलते हैं, इसलिए उनको कहते वो क्रम रहित है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में कोई क्रम नहीं है, वो एक समय में दोनों ही चलते रहते हैं। नहीं, आपका कहना है पहले हम जानते हैं और फिर राग की उत्पत्ति होती है ना? देखो ऐसा नहीं है, ये छद्मस्थ का ज्ञान भी ऐसा है, किसी चीज को इसने देखा तो एक समय नहीं, वो लगातार अंतर्मूर्त तो देखता रहता है, तब उसको ख्याल में आती है। एक समय वाली चीज छद्मस्थ के ज्ञान का विषय है, क्योंकि उपयोग लगातार उसको, ये अंतर्मूर्त इतना छोटा है। देखिए आपको, आपने शास्त्र में सुना होगा हमारे पांच इंद्रियां हैं, तो पांचों ही इंद्रियों का ज्ञान एक साथ होता है क्या, नहीं होता, पहले इसको हम समझेंगे। हाँ नहीं होता, एक के बाद एक होता है क्रम के, यानी मान लेते भी अभी देख रहे फिर सुनने के प्रति उपयोग जाएगा, फिर और कोई स्पर्शन प्रति जाएगा, इतना फास्ट होता है। हमें क्या लगता है हम एक साथ सब कर रहे हैं, देखो हम सब एक साथ करते हैं, कैसे, तो हम भोजन भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, पंखे की हवा भी ले रहे हैं, ये सब देखो हमें पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ भोग रहे हैं। ऐसा नहीं, अपना उपयोग जो उसमें ज्ञान रूप चल रहा है वो इतना फास्ट टर्न होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम पांचों इंद्रियों, क्योंकि उसके संस्कार भी रहते हैं ना, जैसे अगरबत्ती आप जलती हुई लेते और जोर से घुमाते तो पूरा एक सर्कल दिखाई देता है, या जो मूवी होती है उसमें क्या होता है एक एक पीस अलग है और उसका विशिष्ट रेट स्पीड में वो घुमाते हैं, तो हमें लगता है वो ऐसे एक्शन चल रही है। ऐसे ही ये पांचों ही इंद्रियों में उपयोग इतना फास्ट हमारा घूमता है कि हमें ऐसा लगता है कि सबके हम एक साथ सब हम ज्ञान कर रहे हैं, परंतु एक एक विषय में या एक एक इंद्रियों के द्वारा अंतर्मुहूर्त तक जानेगा। अब यहां वो 48 मिनट वाला तो हो ही नहीं सकता, वो भी सेकंड का कितना छोटा पार्ट होगा, क्योंकि जो हमें भासित ही नहीं होता है कि एक अंतर्मुहूर्त हमने देखा, फिर हमने सुना, फिर ये ऐसी, क्योंकि हम तो सामने देख रहे, कोई वक्ता बोल रहा है और हम उसको सुन भी रहे और उसके एक्शन भी देख रहे, हमें ऐसा लगता है ना एट अ टाइम हम दोनों कर रहे हैं, तो उसमें भी कितना वो अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त वाला गैप होगा। तो ये बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त होता है, वैसे यहाँ कहते हैं
अंतर्मुहूर्त हुआ, एक साथ एक पदार्थ को जानता है, एक साथ अनेक पदार्थ को एक अंतर्मुहूर्त में जानता है।
देखो ये विषय जो है ना, वो विषय के भी 12 भेद बताए मति ज्ञान के विषयों में, एक एक विध बहु बहुविध वगैरह आपने उसमें सुना है, इसमें तत्वार सूत्र में ही आया है आगे चलकर, तो उसमें अनेक पदार्थों को एक साथ जान सकता है, परंतु एक इंद्रियों के द्वारा उसका एक विषय, वो विषय में उसके ये भेद पड़ेंगे। इंद्रियों का विषय एक भी होगा, एक प्रकार का भी होगा, जैसे एक होना और एक प्रकार का, एक गाय को हम जान रहे हैं, और जैसे अनेक प्रकार में एक प्रकार की अनेक गायों को भी जान रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना।
24 तीर्थंकर की मूर्ति एक पिलर पर हो गए,
हाँ, तो 24 को एक साथ हम बहु को जानते हैं ना एक साथ, और बहुविध अनेक प्रकारों को भी जानते हैं, जैसे अनाज है हमारे पास तो बहुत से कटोरी भर के चावलों को भी जानते हैं, या चावल है दाल है सब अनेक प्रकार के धान है उनको भी एक साथ जान सकते हैं। ये मति ज्ञान के विषयों की अपेक्षा हर एक प्रकार जो मति ज्ञान है, पांच इंद्रिय और मन छह हो गए ना, तो छह के विषय बारह बारह प्रकार के हो सकते हैं, हर एक में बारह बारह प्रकार रहेंगे विषयों में। उस प्रकार ये पूरे मति ज्ञान के 336 भेद जो बताए हैं सत्वार सूत्र में है आगे चलकर, छह के बारह नहीं हुए, छह एक एक के बारह, 72 हो जाएगी। अवग्रह यहां आवाय धारणा सब में वो छह लगाना पांच इंद्रिया मन 24 हो जाएंगे। अब ये जो मन और चक्षु के द्वारा जो व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह होता है व्यंजनावग्रह वगैरह वगैरह उसमें भी और वो चार बढ़ जाते हैं। ये बहुत विस्तार से आगे बात है, अभी हम दर्शनोपयोग को समझेंगे। इसी के आगे उसका विवरण है, मति ज्ञान के जो भेद है उसके विषय बारह बारह कैसे होते उसकी चर्चा है शास्त्र में, अभी हम यहां पढ़ेंगे आगे। देखो दूसरी पद्धति से बताते हैं, आत्मा के उपयोग का पदार्थोन्मुख होना दर्शन है। अभी पदार्थ के उन्मुख हुआ है उपयोग, पदार्थ क्या है ये जब ख्याल में आता है तो ज्ञान हो जाता है। अब पदार्थ की ओर उसका अटेंशन लगा है, परसेप्शन हो जाता है तो ज्ञान हो जाएगा उसका, परसीव होगा ना, ज्ञान हो जाएगा। उसके पूर्व की स्टेज है ये। द्रव्य संग्रह की 43वीं गाथा की टीका में सामान्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सामान्य अवलोकन कहते हैं हम, उसका अर्थ आत्मा है। सामान्य ग्रहण का मतलब है आत्मग्रहण, और आत्मग्रहण दर्शन है। देखो कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है कि जैसे यहां रूम में अनेक वस्तुएं हैं, तो ये कुर्सी है कि टेबल है, कोई आदमी बैठा है, ये जब डिफ्रेंशिएट होता है तब ज्ञान हो जाता है। तो सभी पदार्थों में बस वो है इतना ग्रहण हो जाना, उसको भी कहीं दर्शन कहा है। इसलिए मैंने कहा दर्शन का अलग अलग पद्धति से वर्णन आता है। टोडरमल जी ने भी लिखा है कि सामान्य पदार्थों का सामान्य अवलोकन वो दर्शन है, और उसका विशेष जो प्रतिभास होता है वो ज्ञान है। वो तो क्या है, जैसे हम स्थूल रूप से कोई परिभाषा बताते हैं और उसी को अधिक विशेष में जानते हैं, वैसे यहां ये बताया है। हमें इतना ही समझना है, ज्ञान के पहले दर्शन है, पदार्थ के टूअर्ड्स पदार्थ के ओर आत्मा का उपयोग लगा है वो दर्शन है, और वो पदार्थ एक्चुअल क्या है उसका हम समझ में आता है, उसको ज्ञान कहने में आता है। अब इसी को ज्ञान को साकार कहते हैं और दर्शन को निराकार कहते हैं। आगे लिखा है ज्ञान को साकार और दर्शन को निराकार कहता है। निराकार यानी जिसको आकार नहीं वो निराकार कहते हैं, परंतु यहां आकार का अर्थ शेप नहीं समझना, पदार्थों को जानना ही आकार कहलाता है। तो ज्ञान कैसा है, पदार्थ क्या कौन सा पदार्थ है उसको जानता है ना, वो कितना बड़ा है, क्या साइज है, क्या रंग है, वो जो कुछ है, तो उसको हम साकार कहेंगे। देखो हम पढ़ेंगे यहां, उसमें आकार का अर्थ लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं है, किंतु जिस प्रकार का पदार्थ होता है उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञात हो उसे आकार कहते हैं। जैसे सुगंध को हमने जाना, ये गुलाब का सुगंध है ऐसा जाना, तो क्या कहेंगे, ज्ञान सुगंधाकार हो गया। तो सुगंध का कुछ यानी गुलाब के आकार का हो गया क्या, सुगंध को जानना ही सुगंध का आकार होना है। जैसे शब्द को जाना, आवाज या कोई वाद्य को जाना, उसकी आवाज को जाना, तो ये जानना ही आकार कहने में आता है। तो शब्द के आकार हुआ, शब्द के आकार हुआ का अर्थ वो शेप नहीं समझना उसमें। जैसे हमने हरे रंग को जाना, तो हरे रंग के आकार हुआ, तो ज्ञान में कुछ ऐसे आकार होता है, या ज्ञान कुछ कलर वाला हो जाता है क्या वहां पर। ज्ञान हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तो जब हमने हरे रंग को जाना तो ज्ञान हरे रंग का हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बोलो क्या हुआ, ज्ञान में क्या हुआ, ज्ञान ज्ञानमय रहा क्या, ज्ञान हरा पीला नीला कुछ हो गया, ज्ञान ज्ञान रूप रह गया। ज्ञान ज्ञान रूप से रहते हुए उसने यह पदार्थ हरा है काला है ये जान लिया, उसको कहते वो उस आकार हो गया। सामने वाले पदार्थों का शेप भी ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान में कोई उस शेप नहीं हो जाता, ज्ञान तो ज्ञान है, उसने वो शेप का निर्णय कर लिया अपने में, उसको कहते उस आकार हो गया। ये ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की कैपेसिटी है कि जैसा सामने वाला पदार्थ है उसको वैसा जाने, ये ज्ञान की वही तो उसका काम है, वही तो उसका लक्षण है, ज्ञान हम उसी को कहते हैं जो अपने में रहकर सामने वाले पदार्थ को जान लेता है, जो कोई है उसका स्पर्श रस गंध वर्ण है या जो अरूपी भी है उसको भी जान लेता है।
हम दाखला लेते थे, म्यूजिक हमने सुना, फिर सोचते कौन क्या बज रहा है, तो फिर ख्याल आता है पियानो बज रहा
है। हाँ, ये जो है ना आप कहते हैं, हाँ इसमें क्या फर्क, पहले तो हमने आवाज सुनी, तो आवाज सुनी और बाद में नक्की किया वो पियानो की है, तो हमने कर्णेन्द्रिय के द्वारा आवाज सुनी और बाद में ये जो निश्चय किया ये पियानो की आवाज, वो श्रुत ज्ञान हुआ। जैसे हमने शक्कर क्या सुना, आपने शक्कर ऐसा शब्द सुना, आपको क्या ख्याल में आ गया, कौन सी शक्कर, वो मीठी होती है डब्बे में रखी है, वो अलग पदार्थ है। शक्कर शब्द कर्णेन्द्रिय का विषय है और आपने जिसको स्मरण किया, जो आपके ख्याल में आ गई उस शब्द के द्वारा, वो तो कुछ अन्य पदार्थ है, वो तो दिखाई दे रही ना। शक्कर सुना आपने कर्णेन्द्रियों के द्वारा और जो आपको अन्य पदार्थ का ज्ञान हुआ, जो दिखाई दे रही है ऐसी शक्कर सफेद आपको ज्ञान में आ गई। तो ये जो शाम को चलेगा विषय, आज नहीं है ना, अच्छा चलो, तो ये श्रुत ज्ञान हुआ। चलो अच्छा ना, कल के विषय का स्पष्टीकरण हो गया। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान के द्वारा हम इंद्रियों के द्वारा कुछ जानते हैं और वो जानने के बाद हम श्रुत ज्ञान के द्वारा किसी अन्य पदार्थ को जानते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के उसके द्वारा हम किसी अन्य पदार्थ को जानते हैं, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं।
हमने सुना शक्कर, वो मति
मति ज्ञान हुआ। हाँ,
और जब वो शक्कर सुना और तरफ ख्याल आया कि ये
उस शक्कर की बात है,
हाँ, जो भी, तो वो
श्रुत ज्ञान हुआ। हाँ, जैसे आपने शक्कर चाय में शक्कर नहीं है या शक्कर लाओ कहा, तो खाली वो शब्द सुना और वो शक्कर नाम के पदार्थ हमारे ज्ञान में आ गया। इस शब्द के द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता है ना, शब्द वाचक है और उसका जो पदार्थ है जिसको वो शब्द बताता है। हमने आत्मा शब्द सुना ग्रंथों में, हमने आत्मा संबंधी बात सुनी, आचार्यों ने हमें आत्मा कैसा है समझाया, उस शब्दों के द्वारा हमने अपने आत्मा को जाना, ये शुद्ध ज्ञान होगा।
समझो किसी दूसरी भाषा में किसी ने कुछ कहा और हम समझे नहीं,
हाँ, तो आपका शब्द ज्ञान हुआ। शब्द ज्ञान तो हो गया ना, जैसे हमने वाटर कहा और आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो आपने क्या सुना, हमने वाटर सुना, तो आप ये जल के लिए वाटर कहते आपको पता नहीं चला, तो उसके द्वारा आपको दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, मति ज्ञान तो हुआ कि नहीं हुआ।
तो हमेशा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं
होता, जरूरी नहीं है मति ज्ञान होकर रहे, परंतु मति श्रुत ज्ञान होता है हर एक, ये जो निगोद से लेकर जो एकेंद्रियों को भी मति श्रुत ज्ञान होता है, यानी अकेले सुनकर ही श्रुत ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। तो इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान होता है, एकेंद्रियों के कौन से इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान होता है, स्पर्शन इंद्रियों के द्वारा, यानी जो कोई उसकी स्पर्शन की पर्याय है सामने वाली चीज की, जो कोई उष्ण है कि शीत है ये जानेंगे, तो उसको खट्टा है कि मीठा है समझेगा कि नहीं समझेगा। आपने आपके घर में कोई पॉट है, उसमें वनस्पति कोई है, उसमें आपने खट्टा छाछ डाल दिया, वो जानेगा कि नहीं ये खट्टा है, क्यों सरला बेन, वृक्ष को समझेगा कि नहीं वो खट्टा है कि मीठा है, स्पर्श से समझेगा कि नहीं खट्टा मीठा, स्पर्श की पर्याय कौन सी है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, इसमें से उसे समझेगा। वनस्पति को कोई काटता है तो उसके वहां वो काटने का वो तो स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा उसका तो पता चलेगा, गर्मी है ठंडी है उसका तो पता चलेगा, कोई कड़क है कोई नरम है वस्तु उसका तो पता चलेगा, परंतु उसको खट्टा है कि मीठा है, उसका गंध कैसा है इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसको स्पर्शनेन्द्रिय एक ही, वो उसका इंद्रिय एक ही है और उसके द्वारा वो स्पर्श संबंधी ज्ञान करता है, तो उसको श्रुत ज्ञान कैसे होता है। तो मुझे ये स्पर्श हितकारी है क्या अहितकारी है, ये वो वनस्पति भी निर्णय करती है। वो वो तो सूरज के प्रकाश की ओर बढ़ती है ना, हमने देखा है घरों में हम कुछ लगाते हैं छोटी छोटी वृक्ष या वनस्पति, तो ये प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो ये मेरे लिए हितकारी उसने जाना है। वृक्ष की जड़ है वो पानी की तरफ बढ़ती है, तो उसको वो भी ज्ञान है, उसमें ज्ञान है तभी तो चल रहा है ना ये बातें। हम देखते कितने वनस्पति टच करते हैं तो वो एकदम सिकुड़ जाती है। क्या कहते उसका नाम क्या है आपके?
लजामणी।
हाँ, वो मराठी में लाजाड़ू कहते उसको। हाँ, तो ये उसमें भी है, वहां पर ज्ञान है वहां पर। द्विमिर्यादी जीव भी वो भय से भागते हैं, कोई हम सामने हाथ लगाते तो उसको ऐसा समझ में आता है अरे ये कोई यहाँ डेंजर है, तो दूसरी ओर चले जाते हैं। तो ये श्रुत ज्ञान है, स्पर्श तो हुआ सामने कुछ है और उन्होंने दूसरा रास्ता लिया, यानी उसने वहां निर्णय हुआ कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये उसका श्रुत ज्ञान हो गया। आपका क्या प्रश्न है? हाँ देखो, अभी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी कहा जाता है कि पौधे को म्यूजिक सुनाते हैं तो
देखो आपका प्रश्न है ऐसा सुना, कभी कभी कहा जाता है कि पौधे को म्यूजिक सुनाते तो पौधा बहुत अच्छे बढ़ता है, तो आप ही बताओ पौधा म्यूजिक सुनता होगा कि नहीं सुनता होगा? हो सकता है उसका जो कोई वाइब्रेशन है, उसको स्पर्शन का ज्ञान है, उसको म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है। यह हमें निर्णय करना है, क्योंकि वनस्पति है उसको तो बस एक स्पर्शन इंद्रिय का ही ज्ञान है। हाँ देखो, अभी ये साकार निराकार की बात। आपका क्या प्रश्न है? आप बराबर पूछिए। ज्ञान के अभी हमने आठ भेद देखे, पांच मध्य आप कौन से ज्ञान के भेद करना चाहते हैं? अच्छा, पूरा करना फिर पूछना। आप पढ़कर मुझे पूछना। हाँ देखो, अमूर्तित्व अमूर्तत्व कहना चाहिए, अमूर्ति भी कहते हैं। अमूर्तित्व यानी अमूर्तत्व आत्मा का गुण होने से ज्ञान स्वयं वास्तव में अमूर्त है। क्या कहना चाहते? आत्मा अमूर्तिक है। मूर्तित्व एक या मूर्तिकपना ये किसका लक्षण है? पुद्गल का। तो पुद्गल के सभी गुण मूर्त स्वरूप है। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, तो आत्मा के सभी गुण भी अरूपी है। आत्मा का ज्ञान गुण रूपी है कि अरूपी है? अरूपी है, सभी गुण अरूपी है। आत्मा का अस्तित्व गुण कैसा होगा? अरूपी है। आत्मा का अस्तित्व चैतन्यमय है कि जड़ है? चैतन्यमय है। परंतु पुद्गल का अस्तित्व रूपी है, वो जड़ है। ऐसे एक एक गुण में वो सभी गुणों के रूप समझ में आते हैं। तो आत्मा का ज्ञान गुण भी कैसा है? अमूर्तिक है। जो स्वयं अमूर्त हो और फिर द्रव्य न हो, मात्र गुण हो, उसका अपना पृथक आकार नहीं हो सकता। अपना पृथक आकार नहीं है ना, जो हमने देखा ना, जो द्रव्य का आकार है वही उस गुण का आकार है। जो द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है उसका एक एक गुण भी असंख्यात प्रदेशी है। वो एक एक गुण एक द्रव्य नहीं है, वो द्रव्य के जो अनंत गुण है वो अभेद अखंड एक, वो द्रव्य के अंग है। तो वो भाव है ना द्रव्य के, तो वो पूर्ण भाग में, पूर्ण द्रव्य के संपूर्ण भाग में वो एक एक गुण है। ज्ञान गुण भी उतने आकार का है, दर्शन गुण भी है, सुख गुण भी है, सब उसी आकार के है। अपने अपने आश्रयभूत द्रव्य का जो आकार होता है वही आकार गुणों का होता है। या है ना, अभी हमने चार्ट द्वारा यहाँ वही बात देखी थी। हमें लगता है सिद्धांत प्रवेश का कुछ अन्य बात हो, ये शास्त्रों में से ही ये उसको अलग करके समझाने के लिए, सरल करने के लिए पहले समझाया जाता है। तो जो द्रव्य का आकार है वही गुण का आकार है। तो द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तो उसका ज्ञान गुण भी असंख्यात प्रदेशी है, वही उसका आकार है। ज्ञान गुण का आधार आत्मद्रव्य है, इसलिए आत्मा का आकार ही ज्ञान का आकार है। आत्मा चाहे जिस आकार के पदार्थ को जाने, तथापि आत्मा को आत्मा का आकार तो शरीराकार रहता है। क्या कहना चाहते हैं? एक शब्द डाला है समुद्घात को छोड़कर। अभी वर्तमान में हमारा अपना आकार कैसा है, आत्मा का आकार, तो अभी शरीर आकार कहेंगे क्योंकि समझाना है ना। आत्मा का आकार उसका अपना आकार है, ऐसा कोई रेडीमेड शरीर नहीं था कि जिसमें जाकर आत्मा घुसा हो, क्योंकि हमने देखा है ये जीव कहीं से मरकर आया था और वहां कर्म का निमित्त हुआ था, कौन सा संस्थान नाम कर्म के उदय से जीव का विशिष्ट आकार हुआ था, परंतु आकार ये जीव की पर्याय है, उसका कौन सा गुण का वो कार्य है? आत्मा में कोई ऐसा गुण है कि उसके कारण उसका आकार हो? हाँ, प्रदेशत्व गुण के कारण आत्मा का अपना आकार, वो उसकी स्वयं की योग्यता से, वो स्वयं का उपादान से बना है। अब सामने निमित्त के रूप में हम कर्म का उदय को लेते हैं, ये तो जीव का आकार हुआ। अभी उस समय उसने अनंत पुद्गल परमाणुओं को लेकर उस शरीर रूप से वहां बन गया वो, तो हम क्या कहते हैं आत्मा का आकार कैसा है? तो शरीर आकार। परंतु मूल में देखे तो आत्मा का अपना आकार है, परंतु अभी समझाना है ना हमको, देह तो देखने में आता है, दिख रहा है, तो आत्मा का आकार अभी वर्तमान में कैसा है? तो शरीर आकार है कह देते हैं। तो यहां एक शब्द डाला समुद्घात को छोड़कर। समुद्घात क्या होता है मालूम है? हाँ, आपका कहना है आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश प्रमाण हो जाना, ये किसकियों के होते हैं? केवलियों के होते हैं। तो केवली के समुद्घात की बात है, वो जब तेरहवें गुण स्थान का अंत नजदीक आता है तब ये केवली समुद्घात होता है। परंतु हम आपके भी समुद्घात होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते। अच्छा, मारणांतिक एक नाम सुना है, मरण के अंतर्मूर्त पहले आत्मा के प्रदेश जहां जन्म लेना हो, क्योंकि कर्म तो बांधे ना, आयु का बंध हुआ है, कहां जन्म है वो सब निश्चित हुआ है, तो जहां जन्म लेना है वहां तक आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं, और फिर यहां जीव मरकर वहां प्रदेश चले जाते, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। अन्य भी समुद्घात होते हैं। हाँ, वेदना देखो, एक है कषाय समुद्घात, एक है वेदना समुद्घात। ये कषाय और वेदना समुद्घात में क्या होता है? तीव्र कषाय होते हैं, तीव्र वेदना होती है, तो आत्म प्रदेश मूल शरीर में तो है ही है, वो बाहर भी थोड़े फैलते हैं। यानी समुद्घात शब्द की परिभाषा ऐसी है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकसना, उसको कहते हैं समुद्घात।
उस समय कर्मों की स्थिति क्या होती?
उस समय कर्म जैसे है तैसे ही रहते हैं, जहां आत्मा के प्रदेश फैले हैं उसमें भी कर्म भी स्प्रेड होते हैं, क्योंकि कर्म तो आत्म प्रदेशों के साथ यूनिफॉर्मली बंधे हुए हैं। मान लेते यहां से अभी इंडिया तक आत्मा के प्रदेश फैल गए मेरे, तो कर्म भी वैसे फैल जाएंगे, क्योंकि कर्म और आत्मा, नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा यहां तो आत्मा के प्रदेश कर्म सहित है और वो समुद्घात किया वो तो कर्म से रहित हो गए, मुक्त हो गए। हाँ, तो कर्म और तेजस शरीर और कारमान शरीर उसमें भी पाया जाता है।
अभी इतना शरीर है तो इतना ढगला है आत्मा का और कर्मों का, फिर जो आत्मा प्रदेश में फैल जाता है वो पतला पड़ जाता है।
हाँ, वो जितना है कर्म वो सब पूरा स्प्रेड हो जाता है। केवली भगवान भी केवल समुद्घात करते हैं, तो उनके तो देह प्रमाण अभी कर्म जो बंधे हुए थे, चार कर्म बाकी है ना, तेजस शरीर कारमान शरीर है, जब पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं तो उनके कर्म भी पूरे ऑल ओवर लोकाकाश में स्प्रेड हो जाते हैं।
केवली समुद्घात तो लोक प्रमाण प्रदेश करते हैं, तो ये कषाय लिमिटेड इसमें?
हाँ, कषाय जो है ना, हाँ आपका प्रश्न है, केवली समुद्घात में तो मैक्सिमम लोक प्रमाण है, उसमें भी चार भेद है, दंड होता है, कपाट होता है, प्रतर होता है, लोकपूरण, जो मैक्सिमम बड़ा जो लोकपूरण होता है वो यानी उसका चौथे पॉइंट पर लोकपूरण होता है। तो ये कषाय समुद्घात कितना होता है? तो हो सकता है एक प्रदेश बाहर आया, दो प्रदेश बाहर है, मैक्सिमम कितने? तो तीन गुना ज्यादा हो सकता है, हाइट वाइज कुछ नहीं बढ़ता, विड्थ वाइज तीन गुना हॉरिजॉन्टली और आगे पीछे भी तीन गुना, तीन त्रिक नौ गुना ऐसा क्षेत्रफल हो सकता है उसका। अभी कषाय समुद्घात की बात है, कषाय समुद्घात में प्रदेश कितने अधिक से अधिक फैल सकते हैं? जो मूल शरीर है हाइट वाइज नहीं बढ़ते हैं, परंतु हम ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसा देखेंगे, आगे पीछे और साइड में तीन तीन गुना तक मैक्सिमम उसकी लिमिट है। हर एक को इतना बड़ा फैलेगा ऐसी कोई बात नहीं है, कम भी फैलेंगे, कुछ थोड़े प्रदेश फैलेंगे, तो अधिक से अधिक इतना, तीन गुना ऐसा आगे पीछे और तीन गुना साइड वाइज, ऐसे इतने फैल सकते हैं। वेदना समुद्रात में भी इतने ही फैल,
मेरी बॉडी एक फुट है तो
तीन फुट हो सकती है। हाँ,
एवरी टाइम क्रोध और वेदना?
नहीं, नॉट एवरी टाइम, सम टाइम्स। अभी वो कुछ ऐसे जानबूझकर प्रदेश फैलाने ऐसे कुछ नहीं, वो तो सहज रूप से हो जाता है किसी के। तो एक है वेदना समुद्रात और एक है केशकषाय समुद्रात। हाँ, कुछ उसका ऐसा कारण नहीं है, आत्म प्रदेश सहज ही फैल जाते हैं फिर वापस मूल शरीर में आ जाते हैं, उसके कोई ऐसा कारण नहीं होता है और सबके लिए होता है ऐसा भी नहीं है। जब मारणांतिक समुद्रात की बात आती है तो किसी के वेदना समुद्रात हुआ और उसी अवस्था में मारणांतिक समुद्रात भी किया, जैसे तीव्र वेदना है, कोई एक्सीडेंट है ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, उसके प्रदेश ऐसे भी फैले हैं और फिर जहां जन्म लेना है वहां तक फैले हैं, ऐसे हो सकता है। हाँ, क्या क्या?
दो एक ही साथ होते हैं।
हाँ, वेदना और मारणांतिक हो सकते हैं। अब दूसरा है, एक तीन हमने देखे ना, कषाय, वेदना और मारणांतिक। एक होता है वैक्रियक समुद्घात। वैक्रियक समुद्घात देवों के होता है, देव जो विक्रिया रूप शरीर धारण करते हैं, हमने सुना है सौधर्म जो जीव है, सौधर्म इंद्र, वो यहां पंच कल्याणकों में आते हैं, या नंदनवन आदि वो कहीं कहीं जाते हैं, या असंख्या द्वीप समुद्रों में घूमते भी है, तो उनका मूल शरीर तो वहां पर ही रहता है जहां वो स्वर्ग में विराजमान है। और जो उत्तर शरीर कहते हैं, दूसरा शरीर बनाते हैं विक्रिया से, और वो शरीर यहां नीचे आता है और आत्म प्रदेश दोनों में ही कंटिन्यूएशन में रहते हैं। जैसे हमें कोई लेजर बीम डालेंगे तो कैसे उसका होता है, लाइन चलते हैं, वैसे दोनों में आत्म प्रदेशों के कंटिन्यूटी रहती है। हाँ, आहारक शरीर में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये वैक्रियक समुद्रात कहने में आता है। अभी आपने जो प्रश्न उठाया वो आहारक समुद्रात में भी ऐसा रहता है। देखो, विक्रिया की बात एक समझने जैसी है, देव है वो पृथक विक्रिया कर सकते हैं, यानी अलग अलग शरीर बना सकते, एक ही देव हजारों सैन्य भी बना सकता है अपने विक्रिया से, उसको पृथक कहते, पृथक यानी भिन्न भिन्न बनाते हैं। आत्मा तो कंटिन्यूअस एक ही है, अनेक शरीर उसने उत्पन्न किए। और जो नारकी जीव है उनके भी वैक्रियक शरीर है, परंतु एक ही शरीर को बड़ा छोटा, या उसने सिंह का आकार लिया, बिच्छू का आकार लिया, या हाथ कोई शस्त्र का आकार कर दिया, इस तरह से वह अपृथक विक्रिया होती है। परंतु समुद्घात में तो मूल शरीर से बाहर निकलते हैं ना, वो वैक्रियक समुद्घात कहलाता है। अभी विक्रिया होना यानी जो अपृथक विक्रिया वगैरह होना, अभी उसके डिटेल्स बहुत है। एक इंद्रियों में भी वायु का एक के और अग्नि का एक के भी विक्रिया होती है। आपका ये आता है ना टोर्नेडो, और आपका कौन, हरिकेन, ये विक्रिया पाई जाती है वायु कायकों की। एक है आहारक समुद्घात, आहारक शरीर जो बनता है। हाँ, किसका प्रश्न है कुछ? हाँ,
नारकी को कहते हैं कि जब उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो उनके प्रदेशों का भी टुकड़ा।
हाँ, आपका प्रश्न है नारकी के शरीर के जो तिल तुल जैसे देह के खंड करते हैं, क्या आत्म प्रदेशों के भी खंड होते हैं? तो आत्मा के कभी भी खंड हो ही नहीं सकते, टुकड़े तो इतने हो गए और उनके आत्मा तो एक ही है, फिर भी उसने अपने को शरीर रूप मान लिया तो ऐसे वो तो दुख तो होता है ना, अरे मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। आत्म प्रदेश फैलना अलग बात है, परंतु आत्म प्रदेशों के टुकड़े नहीं होते, सभी टुकड़ों में एक अखंड आत्मा है। जैसे हमने वो चिपकली, वो उसकी पूंछ टूट जाती, कोई दूर है और ये दूर है, और वो तो हिलती रहती है, तो वहां कंटिन्यूटी है उसमें आत्म प्रदेशों की, तब तक वो तो हिलते रहते हैं और बाद में वो भी बंद हो जाता है उसका, वो तो सबको सिकुड़ जाते हैं ना, मूल शरीर में आ जाते हैं, आत्म प्रदेश मूल शरीर में आते हैं,
टुकड़े हो जाते हैं, बट फिर बिग मेंटली नो दे गेट टुगेदर।
नहीं, डिपेंड्स अवे।
हाँ,
नारकी के तो इकट्ठे हो जाते हैं ना, जैसे पारा है बारह को हमने, हाँ वापस एक हो जाते हैं नारकी के। एक ही आत्मा है, आत्मा के टुकड़े नहीं होते। हाँ,
आत्म प्रदेश
फैल सकते हैं, कंटिन्यूटी रहती है उसकी।
अलग हो गई लेकिन वो जीती रही तो फिर अंदर चले जाएंगे, शरीर के अंदर चले जाएंगे।
हाँ, शरीर के अंदर वो, और वो तो बिना पूछ की हम चिपकली देखते ना, घूमते इधर उधर, तो प्रदेश उसमें आ गए हैं उसके। हाँ, तो हमने देखो कौन कौन से समुद्र देखे, कषाय, वेदना, मारणांतिक, वैक्रेयिक, आहारक, केवली भी को भी देखा था, और एक रह गया तेजस। आपने तेजस शरीर की बात सुनी होगी, द्वीपायन मुनि की कथा सबने सुनी है, द्वारका जलीते नहीं मालूम आपको? हाँ हाँ हाँ, तो उनके जो अशुभ तेजस शरीर निकला था, ये तेजस समुद्घात भी दो प्रकार का होता है, एक अशुभ तेजस शरीर निकलता है या शुभ तेजस शरीर निकलता है। जैसे कहीं बहुत बड़ा संकट आता है या कोई बीमारी फैलती है तो ये मुनियों के ऐसी करुणा आती है कि उनके राइट साइड से, राइट कंधे से शुभ तेजस शरीर निकलता है, पुतला निकलता है, और वहां 9 बाय 12 योजन तक फैल सकता है, और वहां की सारी बीमारियां जो कुछ संकट है उसको निवारण करके फिर मूल शरीर में प्रवेश करते, ये शुभ भाव है, और उसके निमित्त से वो ऐसे सहज हो जाता है। और जो अशुभ तेजस है वो बाएं हाथ से निकलता है, वो केसरी कलर का होता है, सिंदूर जैसे कलर का, बिलाव के आकार का भी कहते हैं उसको। तो ये जैसे भी द्वीपायन मुनि के बारे में हुआ था, ये क्रोध के कारण वहां उत्पन्न हुआ था, और सामने जाकर सब चीज को भस्मीभूत करके फिर मूल शरीर में आता है, वो मुनि का शरीर भी भस्म हो जाता है। तो ये विशिष्ट क्रोध के परिणाम में ऐसी बातें होती है। तो ये द्वीपायन की हमने बात मालूम है आपको, बहुत विस्तार से कथा ये पुस्तकों में भी दी है ना।
तेजस शरीर की जो समुद्र गात है,
हाँ,
भावलिंगी मुनि की होती है।
हाँ, तेजस की जो वृद्धि है ना वो भावलिंगी मुनि के होती है। हाँ, छठे में होगी, क्योंकि सातवें में तो ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है। हाँ, तो होती तो भावलिंगी के होती है। तो आप कहेंगे भावलिंगी मुनि को ऐसा क्रोध क्यों, जब ऐसा क्रोध आता है तो उनका मुनिपना भ्रष्ट हो जाता है, परंतु वृद्धि तो थी ना, तो ये अशुभ तेजस से सब कार्य तो हो गया जलने का, और वो मूल शरीर में आए तो भस्म हो गए। नहीं, द्रव्यलिंगी के नहीं, क्योंकि विशिष्ट संयम के कारण उनको ये रिद्धि प्राप्त हुई है, बाद में वो तो फिर भ्रष्ट हो गए, फिर वनवासी में चले गए, वो बात आगे की अलग बात है, क्योंकि मूल में तो उन्होंने भावलिंग प्रकट किया था। देखो, मुनि भी हो गए तो परिणामों की ऐसी विचित्रता है, तो हो सकता है ऐसा कोई क्रोध आ जावे, अनंतानुबंधी जैसा हो गया अभी तो, गुणस्थान पहला हो गया ना उनका, मिथ्या तो में चले जाएंगे। तो ये समुद्घात कहते हैं। हाँ, बोलो बोलो। सिद्धों के केवली के, हाँ,
तो उसके चार तरह के होते हैं कपट।
हाँ, देखो केवली के जो केवली के समुद्घात होता है, पहले समय में दंड कहते हैं, दंड ने जो ऐसा शरीर का आकार है वैसे ही ये जो है ना, ये दंड मुनिराज यहां मध्य लोक में यहां विराजमान है। मुनिराज ने केवली भगवान 13वें गुणस्थान का अंत समय नजदीक आया है, अभी उनके आयु की जो निषेक बाकी है एक एक करके खिरने वाले, और नाम गोत्र और वेदनीय के जो है, तो आयु के जितने उससे नाम गोत्र वेदनीय के ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी निषेकों की असंख्यात गुणी निर्जरा करने के लिए ये समुद्घात होते हैं। तो क्या होता है, मुनिराज तो यहां बैठे हैं, अब उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक के नीचे से ऊपर तक वातवलय को छोड़कर 14 राजू यानी माइनस वातवलय की जो कुछ माइनस कर देना, तो इतने वो फैल जाते गोलाकार ऐसे दंडाकार, तो उसको कहते हैं दंड। दूसरे समय में क्या होता है, जिस दिशा में मुंह किया है या तो उत्तर में होता है या पूर्व में होता है, तो जो पूर्व की ओर मुंह किया है उसके प्रदेश ऐसे हॉरिजॉन्टली फैलते हैं। दंड तो किया है ना, अब ये दंड हुआ, उसी को उसी वृत्त के साथ ऐसे पूरा लोकाकाश के एंड तक उसको फैलाओ। पूर्व की ओर किया है मुंह, उसके उत्तर दक्षिण की ओर फैलते हैं, ये लोकाकाश है ना, जैसे ये पूर्व पश्चिम है, और दक्षिण उत्तर सर्वत्र 7 राजू है, तो इस तरह से फैलते हैं, और जो उत्तर की तरफ मुंह किया हो उसके पूर्व पश्चिम फैलते हैं, जो हम लोकाकाश का जो आकार देखते हैं वैसे फैलते हैं। आगे पीछे जो मुनि का शरीर है उतनी बीर्थ वाले और लोकाकाश के एज तक, उसको कहते दंड फिर कपाट। तीसरा पॉइंट है जो ऐसे तो लोकाकाश के एंड तक फैले, अब आगे पीछे भी लोकाकाश के एंड तक फैलेंगे एक्सेप्ट वात वलय। ऐसे भी जो हम फैले थे वात वलय को छोड़कर, अब ऐसे आगे पीछे फैलेंगे वो भी वात वलय को छोड़कर, यानी आउटर वात वलय होता है उसको छोड़कर, तब उसको कहेंगे प्रतर। प्रतर पहला दंड, दूसरा कपाट, तीसरा प्रतर, और चौथा कहलाता है लोकपूरण। लोकपूरण वो पूरण पोली वाला वो न बाण वाला न होता है, ये पूरण। तो पूरे लोक में यानी वात वलय के अंत तक पूरे लोक में फैल जाते हैं 343 गणराजु, आत्मा के प्रदेश सर्वत्र फैल गए एक केवली के एट ए टाइम। ऐसे 20-20 केवली फैलाने वाले और समेटने वाले हो सकते हैं। हम केवली के पास नहीं जाते, केवली तो यहां आते हैं हमारे जो समुद्घात करते हैं, तो सुख का अनुभव होता है ना कि नहीं होता है? जहां हम हैं वहां केवली के भी आत्म प्रदेश फैले होते, वो तो अनंत सुख में है, हमें उसका क्या फील होता है ना थोड़ा सा? अच्छा कुछ नहीं होता है। प्रतर में आगे पीछे फैलते, वात वलय को छोड़कर पूरे लोकाकाश में फैलते हैं।
608 जो जाते हैं कितना परसेंटेज में होता होगा?
हाँ, कितने परसेंटेज में? एट अ टाइम 20 और 20 40 कर सकते हैं। हाँ, एट अ टाइम 20 कर सकते हैं एक समय में, अधिक से अधिक 20 केवली एट अ टाइम समुद्घात कर सकते हैं। जैसे अभी दंड वाले हैं, करने वाले भी, और समेट कर फिर दंड। देखो दंड कपाट प्रतर लोकपूरण फिर प्रतर, उल्टा लेना, फिर कपाट फिर दंड और फिर मूल शरीर में, आठ समय में ये पूरा हो जाता है। अपना समय भी पूरा हो गया। 40 एट अ टाइम हो सकते हैं मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम करने वाले 20, करने वाले ने जैसे दंड किया फिर कपाट किया तो कपाट ने भी फैला रहे हैं, और फिर प्रतर लोकपूरण करके फिर ऊपर वापस आएंगे ना, लोकपूरण फिर प्रतर फिर कपाट। तो एक फैलाने वाले 20 और समेटने वाले 20 एट अ टाइम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 40 की है। ये हर समय होते ऐसी बात नहीं है।
और ये 8 समय तक रहते
हैं, एक एक समय में एक एक स्टेज है, 8 समय में पूरा होता ही होता है। और कोई ऐसा नहीं कि दंड करे वापस आवे, कोई ऐसा नहीं कि दंड प्रतर करे और वापस आए कपाट करके। पूरे सारे मनुष्य लोग के मिलकर की बात है। जितने अरिहंत हो गए वो कहाँ है? ढाई द्वीप में है, उनकी बात है। एट ए टाइम 40 हो सकते हैं। सबके मिलकर, सबके मिलकर अरिहंत नहीं, तीर्थंकर यहाँ 24 होते हैं, वो एक के बाद एक होते हैं। यहाँ जो 24 हुए वो एक कोड़ाकोड़ी सागर में 24 हुए हैं, वो एक के पीछे एक हुए हैं, परंतु वो तो तीर्थंकर की बात है। अन्य भी अरिहंत होते हैं, अरिहंतों की बात। अभी रुकेंगे हम, हर बार वो तो अतिक्रमण होता है समय का।
आज प्रतिक्रमण करना है?
हाँ, आज प्रतिक्रमण करना है ना। हाँ बोलो, 2400 भगवान की ही जय।